ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आगे बहुत सोफाज खाली पड़े हैं, जो बहुत पीछे पीछे बैठे हैं वो चाहें तो इधर भी आगे आ सकते हैं। आज हम आंतरिक शक्तियों की चर्चा करेंगे। आप बताइए, हमारी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति कौन सी है? ऐसे तो बाबा ने हमें तीन शक्तियों के बारे में बताया है। थोड़े दिन पहले मुरली आई थी जिसमें बाबा ने कहा था, जो आपका मन है वो ब्रह्मा की तरह से रचना का काम करता है और जो बुद्धि है वो पालना का काम करती है और जो संस्कार है वो जो पुराना है जिसकी जरूरत नहीं है उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो जो सबसे पहली आधारभूत शक्ति हुई वो कौन सी हुई? मन। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है मन। और आज हमको जो हमारे चारों ओर चीजें दिख रही हैं, हमको हवाई जहाज दिखता है, बड़ी चमत्कारिक चीज है, कंप्यूटर दिखता है, ट्रेन दिखती है, मोबाइल दिखता है, लेकिन ये चीजें दिखने से पहले कहां थी? किसी ना किसी मन में थी और मन में से बाहर निकली, हमें दिख गई और अभी भी पता नहीं कितनी चीजें किसी किसी के मन में हैं। वो जब बाहर निकलेगी तो दिखेगी। सतयुग भी अभी कहां है? अभी तो बाबा कहते हैं, बच्चे चारों युगों में चक्र लगाओ, बाप और वर्षे को याद करो। तो अभी तो हमारी स्मृतियों में है और स्मृतियों से जब वो बाहर निकलेगा तो वो साकार में दिखने लगेगा। मन की शक्ति रोजाना के कार्य में केवल 1% लगती है, जिसे हम कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी अरेंजमेंट में केवल 1% शक्ति लगती है। तो बाकी 99% चूंकि उनको हम यूज नहीं करते तो वो दबी की दबी रह जाती। वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति भी कारगर तब सिद्ध होती है जब उसके साथ हमारी मानसिक शक्ति मिल जाती है। कई बार आपने देखा होगा, आप बच्चे को कहते हो बेटा पढ़ ले, ये बात हम मुख से कहते हैं लेकिन अंदर संकल्प में क्या आ जाता है, इसने मेरा कहना मानना तो है नहीं। ये कभी मानता है क्या? ये कभी नहीं बैठ के पढ़ेगा। अब जो मुख से कहा वो तो पॉजिटिव है और अंदर मन में आया वो नेगेटिव है, ये कभी नहीं पढ़ेगा। गति किसकी तेज है? वाणी की गति तेज है कि थॉट की गति तेज है? थॉट की गति तेज है तो बच्चे के पास वो थॉट वाणी से भी पहले पहुंच जाता है। और उसको क्या मोटिवेशन मिलता है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो वो नहीं पढ़ता। क्या हमने कभी एकांत में बैठ करके ये विचार किया कि मेरी वाणी तो पॉजिटिव है लेकिन थॉट तो नेगेटिव है, तो दोनों का मेल तो आपस में हो ही नहीं रहा है। आजकल तो मेल का जमाना है, लोग कहते हैं जैसा ऊपर का कपड़ा हो ऐसा ही उससे मेल खाता दूसरा कपड़ा हो, मेल का जमाना है ना। लेकिन हमारी वाणी और संकल्प में तो मैचिंग ही नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो जब दोनों शक्तियां ऑपोजिट खड़ी हो गई तो काम बनेगा कैसे? काम तो तब हो जब यूनिटी में हो दोनों। जब हम बच्चे को कह रहे थे कि बेटा पढ़ लो, उस समय अगर मन में भी ये विचार होता कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये जरूर पढ़ेगा, ये कंसंट्रेट करेगा, इसकी पढ़ने में रुचि है, ये मेरी बात मानेगा, तब दोनों का आपस में मेल होता, यूनिटी होती और बच्चा जरूर पढ़ता। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया। लेकिन दिन भर में ऐसी कितनी घटनाएं घटती हैं, जब हम मुख से तो अच्छी बात बोलते हैं लेकिन मन में उसके ऑपोजिट थॉट चल रहा होता है, इसलिए हमारी वाणी सिद्ध नहीं होती और कर्म भी सिद्ध नहीं होता। वाणी की सिद्धि और कर्म की सिद्धि तब आती है जब थॉट भी वाणी के अनुकूल हो। तो इसके लिए हमें बार बार अपने भीतर जाना पड़े और बार बार पूछना पड़े अपने से कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या मेरी सोच मेरे लक्ष्य के अनुकूल है, क्या इस विचार से मेरा लक्ष्य मुझे मिल जाएगा। मेरा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है और मेरे विचार की ताकत कितनी है, इसमें तो जरा भी दम नहीं है। तो विचार में दम नहीं है और लक्ष्य हमने बहुत ऊंचा रख लिया तो कैसे प्राप्त होगा। तो मुझे अपने विचार को दमदार बनाना पड़ेगा, विचार को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। हम अपने आप से बात करें, अपने विचार की क्वालिटी को एनालाइज करें और उसकी क्वालिटी को फिर बढ़ाएं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएं, तो हम अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से दौड़ेंगे। कुछ दिन पहले की बात है, एक शहर में एक मेडिकल कॉलेज में हमें निमंत्रण मिला और हम पांच बहनें वहां समय से पहले पहुंची। टाइम तो उन्होंने 11 बजे का दिया था, हम 10:30 बजे इसलिए पहुंचे कि बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं, आपको मालूम है, इंट्रोडक्शन लेना देना बिठाना, बहुत औपचारिकताएं होती हैं। तो हमने सोचा ये पहले पूरी हो जाएंगी तो बच्चों को हम 11 बजे सुनाना शुरू कर देंगे। कई बार बच्चे 12 बजे घर जाने लग जाते हैं आजकल। तो हम 10:30 गए, एक मैडम आई, उसने पूछा परिचय, उसमें 11 बज गए। फिर उसने बोला कि मैं बच्चों को बिठा के आती हूँ, आप वेट करो। 11:30 बजे वो लौटी, उसने बोला कि अभी तो हॉल की सफाई हो रही है, ऑडिटोरियम की तैयारी चल रही है। पौने 12 बजे हमको बुलावा आया कि ऑडिटोरियम तैयार है, आप चलो। हम जब गए तो अभी भी वहां स्वीपर झाड़ू लगा रहा था और कपड़ा मार रहा था और एक भाई माइक सेट करने की कोशिश कर रहा था। हमने सोचा बैठ जाते हैं, माइक सेट हो जाएगा, मैडम ने ऐसे ही बोला। 15 मिनट वेट करने के बाद माइक सेट नहीं हुआ तो मैडम ने कहा बिना माइक के ही बोलिए। तो हमने 12 बजे से 12:15 बजे तक उनको बाबा की बातें सुनाई। उसके बाद बच्चे जाने लगे तो हम 10:30 बजे आए थे और 1:15 बजे तक, क्योंकि 10:30 के बाद 12 बजे शुरू हुआ। तो मैडम ने कहा कि हमने आपका 1.5 घंटा खराब करवाया, लेकिन कमाल की बात यह है कि आप पांचों बहनों में से किसी के चेहरे पर भी ना तो अधीरता आई, ना शांति आई, ना ही आप मुस्कुराती रही। इतनी देर से मैं देख रही हूं। तो मैंने मन में कहा कि आप हमारा टाइम तो खराब करवा सकती थी, पर हमारी शांति थोड़ी खराब करवा सकती, वो तो हमारी अपनी चीज है। टाइम तो हमारी मुट्ठी में नहीं है, पर हमारी शांति, हमारा धैर्य, हमारी मिठास, वो तो हमारी मुट्ठी में है। ठीक है, आपने हमसे सेवा नहीं ली तो इतनी देर हमने शांति के वाइब्रेशन फैलाए, प्रेम के वाइब्रेशन फैलाए, जो हमारे हाथ में था वो काम तो हम कर सकते हैं। कॉलेज आपका है, व्यवस्था आपकी है, सेवा करने वाले आपके हैं, उनकी सेवा कैसी है, कितना टाइम लगाते हैं, इन पे हमारा कोई जोर नहीं है। लेकिन हमारे मन के ऊपर तो हमारा पूरा जोर है ना, उसको चाहे हम भगवान में लगा के रखें, चाहे हम गुणों के चिंतन में लगा के रखें, चाहे हम इतनी देर शुभ भावना में लगा के रखें, कहीं भी लगा के रखें, वो तो हमारा अपना है। फिर मैंने, ये तो मैंने मन में बात कही, फिर मैंने उनको प्रकट में कहा, मैंने कहा मैडम हम तो आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें दो शब्द कहने का मौका दिया। मान लीजिए ये मौका भी ना मिलता तो भी हम बड़ी शांति से वापस चले जाते, क्योंकि आप हमारा कुछ छीनते थोड़े, हमारी चीज तो हमारे पास ही रहती, हम किसी और को दे देते, हमारा नुकसान क्या था इसमें। तो मैडम ने कहा देखो बहन जी, जो वहां की इंचार्ज थी, आपके यहां कभी कोई भी आए ना तो सबसे पहले हमारे कॉलेज में लेकर के आना उसको। तो मैं मन में सोचने लगी कि रिश्ते मधुर बनाने हो किसी के साथ तो क्या करना पड़े। भाषण तो उसको बाद में समझ में आया, या आया कि नहीं आया, लेकिन कम से कम इतनी बात उसको समझ में आई कि ये लोग बड़ी शांति वाले हैं, बड़े धीरज वाले हैं, बड़े मिलनसार हैं और बड़े शीतल स्वभाव के हैं। ये उनके ऊपर पहली छाप लगी कि भाई जब भी कोई हमारे यहाँ आए तो ये बहन जी हमारे यहाँ जरूर लेके आए, हमारे बच्चों के ऊपर इनकी शांति का, इनकी शीतलता का असर तो पड़े। तो वाणी का असर तो बाद में, लेकिन कर्म का असर तो तुरंत होता है। अच्छा मान लीजिए हम थोड़े उतावले हो जाते तो मैडम क्या सोचती है, क्या ज्ञान सुनाएंगे, थोड़ी सी देर हो गई तो देखो कैसे उतावले हो गए। तो व्यक्ति के ऊपर जो पहला असर पड़ता है वो व्यवहार का, और व्यवहार कैसे बनता है, जब हम अंदर ही अंदर अपने मन के ऊपर वर्क करते हैं, अंदर ही अंदर। बाहर तो परिस्थिति नकारात्मक है लेकिन मुझे अपने मन को संभालना है, परिस्थिति भले बिगड़े लेकिन मेरे को अपना मन नहीं बिगाड़ना है। हम अपने मन को पकड़ के बैठे रहते हैं, तुम मत भागना, तुम नेगेटिव मत होना, बाकी जो मर्जी होता है होता रहे, तुम संभल के रहना, तुम मन मना भाव हो जाओ, तुम बाबा में लग जाओ। तो हम किसके ऊपर वर्क कर रही हैं, अपने मन के ऊपर वर्क कर रही हैं, क्योंकि बाहर हम किसी काम को भी मुट्ठी में नहीं ले सकते, कहीं भी वर्क नहीं कर सकते, सब कुछ हमारी पहुंच से बाहर है, केवल हमारा मन हमारी पहुंच में है। तो हम उसी पे वर्क करेंगे, उसी को पकड़ के रखेंगे, और ये हमारी बेसिक शक्ति है, हमने इसको पकड़ा तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हमारी पकड़ में आ जाएंगी। तो सवाल ये है कि हम अपनी मानसिक शक्ति को कितनी कीमत देते हैं, कितना बचाते हैं। बाहर हम बहुत चीजों को बचाते हैं, कोई भी दवा हो, पानी हो। तुम क्या कहते हैं भाई, जितनी जरूरत है उतनी लेना, उसके बाद इसको संभाल के रख देना, खराब मत करना, किसी और के काम आएगी। क्या ऐसा हम अपने मन को भी कहते हैं कि जितनी जरूरत है उतने विचार चला, ये विचार बाद में बहुत काम आएंगे। जहां एक विचार से काम चल सकता है वहां एक ही चला, जहां दो से चल सकता है दो ही चला, ये बहुत काम आएंगे, ये लाखों लोगों के काम आएंगे, करोड़ों लोगों के काम आएंगे। एक एक विचार से हम कितनों कितनों को क्या क्या दे सकते हैं। जो स्थूल चीज हम सेव करते हैं, चलो भाई दवा को, दवा ट्यूब में से बाहर निकल रही है इसे बचाओ, पानी नल में से टपक रहा है इसको बचाओ, ये बल्ब व्यर्थ जल रहा है इसको बचाओ, क्योंकि लाइट काम आएगी, पानी काम आएगा, ऐसे हम कहते हैं। ये मन कितना काम आएगा। बाबा तो कहते हैं बच्चे आप एक एक की शक्ति, मानसिक शक्ति, मानसिक परकंपन हजारों लाखों के दुख दूर करेंगे। तो सबसे बड़ी दवा तो ये है। तो क्या हम अपनी इस शक्ति को इतनी कीमत देते हैं, इतना संभालते हैं, बार बार इसकी चेकिंग करते हैं? मुझे अपने संकल्प को जाया नहीं जाने देना, कुछ भी हो जाए, अगर मैंने ये दृढ़ संकल्प कर लिया, बातें आएंगी जाएंगी, घटनाएं घटेंगी, लेकिन मेरा थॉट, मेरी ताकत, मेरी अमूल्य दौलत है, मुझे इसको जाया नहीं जाने देना। मुझे अपने स्वमान में रहना है, मुझे अपने श्रेष्ठ चिंतन में रहना है। मैं अपने श्रेष्ठ चिंतन को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैंने ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया तो उसके बाद आप देखिए हमारी टोटल आंतरिक शक्तियां सुरक्षित रहेंगी और हम उन्हें जहां चाहें वहां लगा सकेंगे और उसके कैसे चमत्कारी परिणाम हमारे सामने आएंगे। आज की दुनिया में विज्ञान इस बात की कोशिश कर रहा है कि कोई विकलांग ना हो, किसी के पोलियो ना हो, किसी को और भी कई तरह की बीमारियां हैं, छोटेपन में बच्चों को अपन टीका लगाते हैं, सुरक्षा करते हैं। लेकिन सबसे भयंकर है मानसिक विकलांगता। दुनिया में शारीरिक विकलांग तो बहुत थोड़ी हैं, 1% या हो सकता है इससे भी कम हो, लेकिन मानसिक विकलांग कितने हैं? विकलांग उसको कहते हैं भाई दो में से एक पांव नहीं है, दो में से एक हाथ नहीं है, दो में से एक आंख नहीं है, उसको विकलांग कहते हैं। लेकिन हमारी मानसिक शक्ति जो 100% है उसमें से कितनी ब्लॉक हुई पड़ी है? मान लीजिए हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, घर में रहते हैं, कहीं भी हैं, और किसी व्यक्ति से कोई चीज मांगते हैं, कोई सहयोग मांगते हैं, और वो कह देता है कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, मना कर देता है। अब हम उसको जब भी देखेंगे ना, उसके ऑफिस को देखेंगे, उसको देखेंगे, तो विचार क्या आएगा, कैसा आदमी है, सहयोग दे सकता था पर इसने दिया नहीं, कैसा आदमी है। दूसरे को कहेंगे पता है इससे मैं अमुक चीज मांगने गया था, इसने मुझे दी नहीं। अब ये जो स्मृति है इसने मेरी मानसिक शक्ति को 50% घेर लिया, तो ये मानसिक विकलांगता नहीं तो और क्या है? मेरी आधी शक्ति तो गई, ब्लॉक हो गई, अब बाकी बची आधी से मैं क्या क्या कर लूंगा? अच्छा मान लीजिए ऐसी एक घटना और घट गई, कोई एक और व्यक्ति है, उससे हमने कोई चीज मांगी, कोई कुछ कहा उसने भी नहीं किया। अब उस घटना ने भी 25% जगह और घेर ली, अब कितनी बची 25%। उसमें हम क्या क्या कर लेंगे? हमारे पास शारीरिक बल है, धन का भी बल है, हमारा पद भी बहुत ऊंचा है, हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत है, लेकिन चूंकि अंदर से ना मोटिवेशन है, ना उमंग उत्साह है, ना प्लानिंग है, तो ये सारी की सारी चीजें होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, विकलांग की तरह से बैठा हुआ हूं। सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि मेरी मानसिक शक्ति पैरालाइज्ड है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन 100% काम करे, उसकी शक्ति 100% यूज हो, तो क्या करना पड़े? इस तरह की जो बातें जगह घेर करके बैठी हुई हैं, उनको निकाल के फेंकना पड़े। और ये बातें आप एक को निकाल के फेंकेंगे, फिर एक और आ जाएगी, आपको उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा, फिर और आ जाएगी, उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा। अर्थात घड़ी घड़ी अपने मन के ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा कि इसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। आजकल हार्ट के ब्लॉकेज की बात होती है, भाई ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, ब्लॉकेज हो जाती है, लेकिन माइंड में कितने ब्लॉकेज हो जाते हैं, रिश्तों का सर्कुलेशन ही नहीं होता। उस व्यक्ति से अपने को लाख फायदे हो सकते थे, लेकिन अपन ने रास्ता ब्लॉक कर लिया, बस आज के बाद इससे अपन को बात ही नहीं करनी है, इसने ना कर दी थी, ये ऐसा है, ये वैसा है, एक रास्ता ये ब्लॉक कर लिया, एक इधर ब्लॉक कर लिया, एक इधर ब्लॉक कर लिया। अगर बोलना भी पड़ता है तो आधे अधूरे मन से बोलते हैं। तो अगर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं लोगों के साथ, तो हमारे तो बहुत सारे फायदे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जीवन में चहुमुखी विकास के लिए हमें हर व्यक्ति से कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। जैसे बाबा ने कल मुरली में कहा था कि जैसे भोजन बनाते हैं तो उसमें हर चीज का महत्व है, नमक का भी महत्व है, मिर्च का भी महत्व है, कई लोग हल्की सी चीनी डालते हैं उसका भी महत्व है, अगर वो ना डले तो भोजन में टेस्ट नहीं आता। तो इस ईश्वरीय कार्य में किसी का नमक जितना योगदान है कि मिर्च जितना योगदान है कि चीनी जितना योगदान है, हर एक के योगदान की जरूरत है। लेकिन अगर मुझे वो योगदान नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मेरी तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। इसलिए हम अपने मन को 100% यूज करें, उसके सभी नूक एंड कॉर्नर देखें कि इसमें कोई पुरानी बात, कोई पराई बात, कोई व्यर्थ बात, कोई यूजलेस बात इसके भीतर पड़ी तो नहीं है। एकांत में बैठ करके अच्छे से चेकिंग करें, और चेक भी कर लेते हैं, चेक करने के बाद तुरंत चेंज करें। होता क्या है, व्यक्ति क्या सोचता है कि किसी को दिख थोड़े रही है, दिखने वाली चीज को वो पहले बदलने की कोशिश करता है। हम छोटे बच्चे थे तो हम स्कूल में पढ़ने लगे तो देखो सबसे पहले हमें क्या सिखाया गया, बेटा तुम्हारी आंख कहाँ है, वेयर इज योर नॉज, वेयर आर योर टीथ, ये सब तो सिखाया गया, किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारा मन कहाँ है, क्योंकि वो दिखता ही नहीं था, उसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई, वो इग्नोर हो गया। फिर थोड़े बड़े हुए तो भी घर के लोगों ने कहा भाई घर से बाहर निकल रहे हो, बाल ठीक कर लो, थोड़ा चेहरा ठीक कर लो, कपड़े ठीक कर लो, किसी ने नहीं कहा घर से बाहर निकल रहे हो, अपना मन ठीक कर लो, किसी ने नहीं सिखाया। तो हमने क्या सोचा कि बस ये सब ठीक कर लो, ये जैसा भी है इसका पड़ा, इसको पड़ा रहने दो, किसी को दिखता तो है नहीं, दिखेंगे तो बाल, कोई ये तो कह देगा तुम्हारे बाल उलझे क्यों पड़े हैं, कोई ये थोड़े कहेगा तुम्हारा मन उलझा क्यों पड़ा है, पड़ा रहने दो उलझा, उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद और बड़े हुए तो हमने देखा कि बाजार में ऐसी ऐसी दुकानें खुल गई जो लोगों की बाल उलझे हो तो उन्हें ठीक कर देती हैं, आंख टेढ़ी बाकी हो उन्हें ठीक कर देते हैं, दांत भी ऊंचे नीचे हो उन्हें ठीक कर देती, लेकिन मन ऊंचा नीचा टेढ़ा बांका उलझा पलझा जैसा भी हो उसको ठीक करने वाली कोई दुकान नहीं। तो बड़े हो गए तो भी उसी दुकान में गए जो बाल बाल ठीक करे, मन ठीक करने वाली दुकान वहां भी नहीं सोची ना ढूंढी ना सहज मिली, तो ये बेचारा उलझता ही रहा। और अब जब बाबा ने ज्ञान दिया तो समझ में तो आ गया कि ये बड़ी शक्ति है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, इसको हमें सुलझा के रखना है। चेक भी कर लेते हैं लेकिन चेक करने के बाद क्या सोचते हैं, सुबह नहीं दोपहर करेंगे, शाम करेंगे, कल करेंगे, छुट्टी वाले दिन करेंगे, भट्टी वाले दिन करेंगे, मधुबन जाएंगे तब करेंगे, क्योंकि ये दिखता नहीं है और कोई टोकता भी नहीं है, ये तुम्हारा मन कैसा है इसे ठीक करो। तो ये बेचारा उपेक्षित का उपेक्षित रह जाता है, इसमें गांठें बनती जाती हैं, ब्लॉकेज बनते जाते हैं और इसकी शक्तियां नष्ट होती चली जाती हैं। लेकिन मनमनाभव होने के लिए तो यही चाहिए, एकाग्र होने के लिए यही चाहिए, योग का आनंद लेने के लिए यही चाहिए, ईश्वरीय शक्तियां और खजाने अपने में भरने के लिए यही चाहिए। सोर्स तो यही है, इसके थ्रू ही बाबा से अपन जुड़ते हैं। और ये इतना भारी हो गया कि इसको कहते हैं चलो परमधाम, तो ये यहां तक चक्कर लगा के फिर नीचे आ जाता है, भारी इतना है, इतनी चीजें इस पे टांग रखी हैं, इतनी चीजें इसमें भर रखी हैं। थोड़ा ऊपर गया एक बात याद आ गई, थोड़ा ऊपर गया दूसरी बात याद आ गई, तीसरी बार ऊपर ले जाने लगे, अरे तो इन बातों को निकालो ना ताकि ये बेचारा ऊपर जाए। हमारे जगदीश भाई जब सेवा के लिए बहनों को भेजा करते थे तो आपको पता है शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोरीज, लाइट चली जाए तो सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, लिफ्ट काम नहीं करती, तो पहले से सिखा के भेजते थे चप्पल फ्लैट पहन के जाना, और जो पर्स है उसमें बिल्कुल केवल काम की चीज लेके जाना, ताकि अगर 10 मंजिल चढ़ना भी पड़ जाए तो वो भारी पर्स परेशान ना करे, ऐसे सिखा के भेजते थे। अब परमधाम कितना मंजिल है, वो तो 10 मंजिल बिल्डिंग होती है, परमधाम कितना ऊंचा है, इतनी ऊंचाई तक मन को लेके जाना है तो उसको कितना लाइट होना चाहिए, जरा भी भार होगा तो उसको मुश्किल आएगी। इसलिए हवाई जहाज में भी रिफाइंड पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल में फिर भी कुछ अशुद्धि होती है, रिफाइंड में बिल्कुल अशुद्धि नहीं होती, तो इसलिए वो फ्लाई करता है। तो मन को भी रिफाइंड बनाना पड़े, फ्लाई करे। एक तो हमें योग के लिए, एकाग्रता के लिए, ईश्वरीय शक्तियों के लिए स्वच्छ मन चाहिए, और दूसरा जब हमारा मन स्वच्छ था तो इसमें जो 7 मूल क्वालिटीज हैं वो 100% थी, उसको हम कर्मातीत स्थिति कह सकते हैं, बाप समान स्थिति कह सकते हैं। जब हम परम धाम में बाबा के पास बैठे थे तो बाप समान थे, अर्थात बाबा भी 7ों गुणों के सागर और हम आत्माएं 7ों गुणों में फुल थी। लेकिन जैसे ही हम सतयुग में पहले जन्म में आए, जिसको हम कहते हैं उतरती कला शुरू हो गई, अर्थात 7 क्वालिटीज की परसेंटेज डाउन आने लगी, शांति 100% से 98, 96, 90, 80 होती होती कम होती गई, प्रेम कम होता गया, आनंद कम होता गया, और इस अंतिम जन्म में तो ये सारी चीजें विकृत हो गई, प्रेम विकृत हो गया, शांति विकृत हो गई, आनंद विकृत हो गया। अब जब प्रेम विकृत हुआ तो उसके दो रूप बन गए, एक अटैचमेंट बन गई और दूसरा लस्ट बन गया। अब अटैचमेंट में भी क्या है, अटैचमेंट एक ऐसी चीज है जो सामने वाले की उन्नति नहीं होने देती, और ऐसे ही लस्ट है उसमें भी सामने वाले की उन्नति नहीं होती। प्रेम का मतलब है सामने वाले की उन्नति होगी, शुद्ध प्रेम जहां होगा, हम जिससे प्रेम करेंगे उसकी प्रोग्रेस होगी, वो ऊंचाइयों को छुएगा। जैसे बाबा का हमसे प्रेम है तो बाबा ने हमको कितना ऊंचा बना दिया और अभी हम ऊंचे चढ़ते ही जा रहे हैं। चाणक्य का चंद्रगुप्त से प्रेम था, एक छोटे से अनाथ जैसे बच्चे को उसने क्या से क्या बना दिया। मदर टेरेसा का बच्चों से प्रेम था, तो कैसे वंचित बच्चों को, अनाथ बच्चों को उसने ऊंचा उठाया। अब जब भीतर में प्रेम की कमी हो जाती है, जैसे आप मोबाइल में सुनते हो ना कि भाई आपका बैलेंस 10 रुपए से भी कम है, कृपया डलवाइए पैसे, तो ऐसे ही भीतर में जब बैलेंस 10 रुपए से भी कम हो गया, अर्थात 10% से भी कम हो गया, प्रेम बचा ही नहीं, शांति बची ही नहीं, तो बाहर इसका रूप क्या प्रकट होगा, इरिटेशन आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, जोर से बोलेंगे, चिड़के बोलेंगे, क्रोध में बोलेंगे, पहली बार में ही बोलेंगे तो ही चिल्ला के बोलेंगे या बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जैसे मोबाइल भी घुर्र घुर्र करने लगता है या बीच बीच में बंद हो जाता है, बैटरी डिस्चार्ज है, तो जब शांति की परसेंटेज अंदर में कम है तो बाहर ये चिन्ह प्रकट होते हैं, बोलेंगे नहीं, मिठास नहीं रहेगी, शुभ भावना नहीं रहेगी, सम्मान नहीं देंगे, नजरें नहीं मिलाएंगे, बात को बीच में काटेंगे, टेढ़ा मेढ़ा उत्तर देंगे। ये किस बात की निशानी है, अंदर में शांति का बैलेंस बिल्कुल खत्म, अंदर में प्रेम का बैलेंस बिल्कुल खत्म है। जैसे हमारे शरीर में भी एक बैलेंस है, पानी है लगभग 67% और मिट्टी है लगभग 33%, बाकी तो अग्नि में, वायु में, वैक्यूम में, इसमें तो कोई वजन नहीं है, वजन वाली ये दो ही चीजें। तो जब पानी का बैलेंस बिगड़ता है तो बेचैनी होती है, और मिट्टी का बैलेंस कम होता है तो भूख लगती है, बेचैनी होती है, तो अपन कोशिश करती है तुरंत भोजन खाएं, तुरंत पानी पिए। ऐसे ही जब शांति अंदर में कम हो जाती है तो हमको भी लगता है शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। तो इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए, लोगों के साथ ठीक से डीलिंग करने के लिए, मुस्कुराने के लिए, बढ़िया व्यवहार करने के लिए, लोगों की बात टॉलरेट करने के लिए, या स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए भी तो हमें अंदर का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए भी क्या चाहिए, इसके लिए भी योग चाहिए, ताकि हमारा अंदर का बैलेंस बना रहे, और विपरीत परिस्थितियों में हम अपने गुणों को, गुणों का प्रदर्शन कर सके। और इसके लिए हमारा मन बड़ा स्वच्छ, बड़ा लाइट और बहुत माइटी चाहिए। इसलिए मन का संरक्षण बहुत आवश्यक, और मन की शक्तियों को बचाने वाली है बुद्धि। काम तो मन करता है लेकिन बुद्धि उसको दिशा देती है। तो हमारी बुद्धि भी बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। शक्तिशाली बुद्धि मन को दिशा देगी। मान लीजिए आजकल तो ठंड के दिन आए हैं, ठंड के दिन चल रहे हैं और बाजार में एक बहुत अच्छा फ्रूट आता है किन्नू, बहुत ठंडा होता है पर उसका रंग बहुत सुंदर होता है। मान लीजिए हमको खांसी है, जुकाम है और हम ऐसे बाजार में से जा रहे हैं और सामने हमने देखा है किन्नू का जूस ये व्यक्ति दे रहा है, इसकी दुकान पे किन्नू का जूस मिल रहा है, तो जो मन है वो एकदम क्या कहेगा, मैं किन्नू का जूस पीऊं। बुद्धि क्या कहेगी, बुद्धि कहेगी नहीं, तुमको कोल्ड हुआ है, डॉक्टर ने 2 दिन के लिए ठंडी और खट्टी चीज खाने से मना किया है, 2 दिन के बाद पियेंगे। मन कहता है नहीं मेरे को पीना है, 1 गिलास से कुछ नहीं होता है, मैं 1 गोली ज्यादा खा लूंगा। बुद्धि कहती है 1 गिलास बहुत नुकसान करेगा, बीमारी में तो 1 गिलास क्या, आधा गिलास भी नुकसान करेगा, 2 दिन में क्या हो जाएगा, ये दुकान भी यहीं रहेगी, ये व्यक्ति भी यहीं रहेगा, ये फ्रूट भी यहीं रहेगा, 2 दिन के बाद तुम 4 गिलास पी लेना। अब देखते हैं क्या होता है। अगर आत्मा ने मन की बात मानी तो क्या कहेंगे, उसको क्या नाम देंगे, हमने क्या किया, मनमानी। मनमानी अच्छी चीज होती है क्या? बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा तुम मनमानी मत करो। तो मनमानी माना क्या, मन में जो थॉट उत्पन्न हुआ, स्पॉन्टेनियस थॉट आया, किसी चीज को देख करके वो अच्छी लग गई, किसी चीज को देख के मुंह में पानी आ गया, किसी चीज को सुन करके वो अच्छी लग गई और मन उसके पीछे लपक पड़ा, मेरे को चाहिए, बस मेरे को चाहिए, इसको कहते हैं मनमानी। हमने मन की बात मान ली, ठीक है तेरे को चाहिए तो ले ले, कर ले, खा ले। लेकिन बुद्धि ने अपनी शक्ति से मन को रोका और आत्मा ने बुद्धि की बात मानी तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बुद्धिमानी। किसकी बात मानी, बुद्धि की बात मानी। बढ़िया बात कौन सी है, मनमानी या बुद्धिमानी, बुद्धिमानी। हम आमतौर पे धोखा कब खा जाते हैं, जब मन की बात मान लेते हैं। तो मन एक बहुत बड़ी ताकत है और मन मना भव होने में मन का ही रोल है, लेकिन मन के ऊपर अंकुश चाहिए, किसका, बुद्धि का। हमें बुद्धिमानी करनी है, बुद्धि की बात माननी है। इसलिए जब भी मन के अंदर थॉट पैदा हो, थॉट्स तो तीव्र गति से पैदा होते हैं, एवरी मोमेंट पैदा होते रहते हैं, हर एक थॉट को फिल्टर करना आवश्यक। जैसे कहते हैं भाई पानी, हम तो फिल्टर वाला पानी पिएंगे नहीं तो हम प्यासे रह लेंगे। आजकल देखो जगह जगह आरओ लगे हुए हैं। जैसे पानी फिल्टर वाला चाहिए, ऐसे ही थॉट भी फिल्टर होने के बाद ही कर्म में आना चाहिए। बुद्धि इसके लिए फिल्टर। और इसलिए बाबा हम बच्चों को कहती हैं त्रिकालदर्शी बन करके सोचो, इस कर्म का वर्तमान में रिजल्ट क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति से, एक बच्चे से घर में एक चीज बिगड़ गई, टूट गई। अब उसको एक विचार तो ये आता है कि मैं इस चीज को उठा करके फेंक दूं और मेरे से पूछा जाएगा वो चीज कहां है, तो मैं कहूंगा मुझे मालूम नहीं है कहां है। और दूसरा विचार आता है कि मैं बता दूं कि मेरे से ये चीज टूट गई है तो मुझे जो सजा मिलेगी या डांट मिलेगी कोई बात नहीं है, मैं सहन कर लूंगा। अब देखिए, एक है सच बोलने का मार्ग और एक है झूठ बोलने का मार्ग। सच बोलने वाले मार्ग में डांट भी पड़ेगी, हो सकता है पिटाई भी हो जाए, मे बी। झूठ बोलने वाले मार्ग में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक बार झूठ बोला तो क्या होगा, झूठ बोलने की आदत बनेगी, झूठ बोलने का संस्कार बनेगा। अगली बार गलत कर्म करके फिर झूठ बोलेंगे, फिर गलती होगी, फिर झूठ बोलेंगे। तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा नुकसान किससे होगा, अल्प काल में तो झूठ बोलने का फायदा है, बच जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में संस्कार बिगड़ा, आदत बिगड़ी, और इसका शॉर्ट टर्म में तकलीफ है, थोड़ी नजरें झुकानी पड़ेंगी, थोड़ा सुनना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बार डांट पड़ी, सावधानी मिली तो हम सावधान रहेंगे, डांट पड़ी थी आगे से गलत काम नहीं करना है, नहीं करना है। अब जो त्रिकालदर्शी व्यक्ति होगा वो क्या सोचेगा, मुझे अल्पकाल का फायदा नहीं देखना, मुझे लॉन्ग टर्म का फायदा देखना है, इसलिए मुझे अपने संस्कार नहीं बिगाड़ने, मेरे को सच बोलना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप त्रिकालदर्शी बन करके डिसीजन लो, अल्पकाल का लाभ मत देखो। तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए, जो दूर तक का देखे, तीनों कालों को सामने रख करके डिसीजन ले। और मन और बुद्धि मिलकर के जो काम करेंगे, मान लीजिए हमने उस दिन किन्नू का जूस पी लिया तो हमारी आदत पड़ गई मन की मानी करने की, अगली बार फिर ऐसे ही कोल्ड हुआ, फिर वो दिखाई दिया तो अंदर में जो संस्कार पड़ा हुआ है वो बोलेगा कि पिछली बार भी पिया था, इस बार फिर पी लो, मैं साक्षी हूं तुमने किया था, वो फिर करेगा, वो फिर करेगा। और अगर एक बार उसने कहा होगा कि नहीं करना तो अंदर में संस्कार क्या बन गया, नहीं करना। तो जब अगली बार ऐसा ही मौका आएगा तो वो अंदर से संस्कार बोलेगा, पिछली बार भी तो तुमने अपने को नियंत्रित किया था ना, अभी फिर करो। तो वो संस्कार नियंत्रण के लिए हमको बल देगा। इसलिए बुद्धि बहुत शक्तिशाली चाहिए। और बुद्धि शक्तिशाली कैसे बनेगी, बुद्धि का काम है देखना, नेत्र है वो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे एक को ही देखो, एक से ही सुनो, एक से ही बात करो, एक को ही मित्र बनाओ, केवल एक को। संस्कृत में कहते हैं यद ध्यायति तद भवति। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। दुनिया में लोग क्या करते हैं, अच्छे लोगों पे ध्यान केंद्रित कम करते हैं और बुरे लोगों पे ज्यादा करते हैं। आपने सुना होगा लोगों को बताते हुए, आपको पता है अमुक व्यक्ति इतना झूठा है, उसने ये भी झूठ बोली, ध्यान कहां केंद्रित है, झूठ के ऊपर। अमुक व्यक्ति इतनी रिश्वत लेता है, बात मत पूछिए, ध्यान कहां केंद्रित है, उसकी बेईमानी पे। अमुक व्यक्ति इतना चरित्रहीन है, बात मत पूछिए, उसकी पूरा चिट्ठा खोलेंगे एक बार उसने ये किया, फिर दूसरी बार उसने ये किया। तो यद ध्यायति तद भवति के फार्मूले के अनुसार जिसका वो चिट्ठा खोले जा रही हैं, जिसका वो वर्णन किए जा रही हैं, वर्णन नहीं करते तो मन मन में उसके बारे में सोचे जा रही हैं, ये अमुक सीट पे जो व्यक्ति बैठा है ये ऐसा है, कल इसने ऐसे किया, परसों इसने किया, तो जिसके साथ ध्यान लग रहा है उसकी क्वालिटीज अंदर आती जा रही है। लेकिन बाबा ने हमको क्या कहा, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है, नहीं तो वो आप में आ जाएगा। छूत की बीमारी है ये, अवगुण का संकल्प किया और हमारे में आ गया। तो मेरे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने वो रहे जो सर्वोच्च गुणवान है, जिसमें सबसे अधिक पॉजिटिव क्वालिटीज है, जो सारे पॉजिटिव वर्च्यूज का ओशन है, मेरे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने वही रहे। और मेरा मन भंवरे की तरह से उसके चारों ओर मंडराता रहे, बाबा के गुणों का चिंतन करता रहे, तो क्या होगा, बुद्धि भी शक्तिशाली बनेगी और मन को भी एक दिशा मिलेगी, मन को भी एक ठिकाना मिलेगा। मन को कोई ना कोई चीज चाहिए चिंतन के लिए और बुद्धि को कोई ना कोई दृश्य चाहिए देखने के लिए, ये खाली नहीं रह सकते। तो इनको बिजी कैसी करी, इसलिए बाबा ने कहा एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, अर्थात आपको देखे बिना रहा नहीं जा सकता, तो आप मुक्ति को देखिए, परमधाम को देखिए, जीवन मुक्ति को देखिए, देखे बिना नहीं रहा जा सकता। और सोचे बिना नहीं रहा जा सकता तो क्या सोचो, मैं कौन मेरा कौन, हमारी दादी का ये मंत्र है, मैं कौन हूं, इसका भी बड़ा भारी विस्तार है, मैं कौन हूं। बाबा ने कल की मुरली में कहा तुम बाप से भी ऊंचे, बाप के भी सिर के ताज हो। और ऐसे ऐसे तो पता नहीं हमारे कितने स्वमान, बाप के नैनों के नूर हो, मस्तक मणि हो, बाप के राइट हैंड हो, बाप के कार्य को पूरा करने वाले खुदाई खिदमतगार हो, मैं कौन हूं इसकी तो बहुत लंबी लिस्ट है, और मेरा कौन है उसकी भी बहुत लंबी लिस्ट है। वो सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वोच्च, दयालु, कृपालु, शांति का सागर, प्रेम का सागर, दाता, विधाता, वरदाता, भाग्य विधाता, करुणामय, क्षमाशील, निर्भय, निर्वैर, ये भी बहुत लंबी बाबा की गुणों की लंबी माला है जिसे हम फिराते रहे। तो यद ध्यायति तद भवति, अगर इनका ही ध्यान करेंगे तो हम ऐसे ही बन जाएंगे, और हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम ऐसे ही बन जाएं। तो इससे हमारी मानसिक शक्तियां इतनी बढ़ जाएंगी, जिसको कहते हैं कि पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे वो जो सोच लेते थे वो हो जाता था, और वो जो मुंह से शब्द बोल देते थे वो साकार हो उठता था, सोच भी साकार हो जाती थी, वाणी भी साकार हो जाती थी। क्यों हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने अपने मन को सब तरफ से हटा करके एक ध्येय पे बेचक, शिव बाबा का सत्य परिचय उनके पास नहीं भी था तो भी एक जगह उनका मन केंद्रित था, उस एकाग्रता के बल से मन में शक्तियां आ गई। और हमारे पास तो डबल पावर हो गई, एकाग्रता की शक्ति भी और परमात्मा पिता की शक्ति भी, इसलिए हमारे संकल्पों की सिद्धि तो हुई पड़ी है और हमारी वाणी तो प्रैक्टिकल हुई पड़ी है। इसलिए हम अपने आंतरिक रिसोर्सेज की बहुत संभाल करें। हमारी सबसे बड़ी दौलत यही है, मान लीजिए अपने को अभी अभी यहां से उठ के भागना पड़े, देखो अपन क्या क्या ले जाएंगे, भागते भागते हो सकता है कोई कपड़ा भी छूट जाए, बैग भी छूट जाए, पेन भी छूट जाए, मोबाइल भी छूट जाए, हो सकता है, लेकिन मन का कुछ हिस्सा छूटेगा क्या, मन तो 100% जाएगा। भारत छोड़ के विदेश जाना पड़े, संबंधी छूट जाएंगे, गली मोहल्ले छूट जाएंगे, लैंग्वेज पीछे छूट जाएगी, और भी बहुत सारी दौलत प्रॉपर्टी पीछे छूट जाएगी। भाई मैं कुछ परसेंट लेके आया हूं, लेकिन मन मन तो हमारे साथ ही जाएगा। तो एक ऐसी चल संपत्ति जो हर जगह हमारे साथ चलती है वो हमारा मन है, मन बुद्धि संस्कार। लेकिन चूंकि ये पहली शक्ति है थॉट पैदा करने वाली, इसलिए मन पे मैं ज्यादा जोर दे रही हूं। तो ये तो 24 घंटे हमारे साथ, नींद में भी, जागृत अवस्था में भी, देश में भी, परदेश में भी। तो मैं अपनी इस दौलत को पहले बचाऊं, ये मेरी अमूल्य दौलत, ये बचेगी तो बाकी सब चीजें अपने आप बच जाएंगी। इसकी बदौलत मैं कितनी दौलत खड़ी कर सकती हूं। और अगर ये मन ही मेरा काम में नहीं, आज लोगों के पास डिप्रेशन है, तनाव है, मन रूपी कुंजी उनके हाथ से छूट गई है, तो बताइए उनके पास क्या है? दौलत है वो ध्वस्त हो जाती है, संबंध है वो बिखर जाते हैं, क्या बचता है? इसलिए जिसने अपने मन को संभाला उसने सब कुछ संभाला। और बाबा ने हमको मन संभालने के लिए तो सारा ज्ञान दिया है, कोई भी मुरली उठा करके देखी उसमें यही मिलेगा। बच्चे अपने मन को कहाँ लगाओ, मन के मालिक कैसे बनो, मन को दिशा कैसे दो, मन के अंदर चिंतन कैसा करो, सारी की सारी पढ़ाई मन की है। दुनिया ने जिस चीज को इग्नोर किया बाबा ने सबसे ज्यादा उसी को हाईलाइट किया। तो हमको भी तो उसी को देखना, सुनना, पढ़ना है, उसी का चिंतन करना है, बार बार उसी का हालचाल पूछना है, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा हालचाल क्या है, तुम ठीक ठाक हो, लापरवाह तो नहीं हो, तुम्हारा उमंग कम तो नहीं हो गया, तुमको कोई आलस्य तो नहीं आ रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन तो नहीं हो रहा है, बार बार इसका हालचाल पूछते। बाबा ने कहा कोई दूसरा तुमसे हालचाल पूछे तो उसको कहो कि हम सदा खुशहाल हैं और चाल हमारी फरिश्तों जैसी चाल है। तो दूसरा हमसे हालचाल ना पूछे, इसके लिए हम खुद अपना हालचाल हर घड़ी पूछते रहें। ओम शांति।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो,
या
अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें